SBS हिंदी पर अगर आपको याद हो तो कुछ समय पहले हमने एक इंटरव्यू किया था और वो इंटरव्यू था एक प्रकार के फंडरेजिंग का जो किया जाता था एक रैली के द्वारा, जिसमें चार दोस्त जुड़े थे, एक छोटी सी गाड़ी में बैठे थे और उन्होंने एक एडवेंचरस जर्नी करी थी। और आपको अगर उस कैंपेन का नाम याद हो तो वो था होंक होंक ओल्ड मॉन्क। तो चलिए अब जानते हैं ये जो पूरी एडवेंचरस यात्रा थी उसके अनुभव कैसे रहे। और हमारे साथ जुड़े हैं इस अनुभव को शेयर करने के लिए श्री राज जी, जो एक सदस्य भी थे। राज जी, SBS हिंदी पर आपका स्वागत है।
सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया SBS रेडियो का और हरिता आपका कि मुझे मौका दिया गया अपने टीम की तरफ से प्रतिनिधित्व करने का और उस एक यादगार जर्नी को इस रेडियो के माध्यम से दुनिया तक, लोगों तक पहुंचाने का, तो बहुत बहुत शुक्रिया।
दोस्तों, एक बार आपकी मेमोरी थोड़ा रिफ्रेश करवा दूं कि ये जो होंक होंक ओल्ड मॉन्क जो कार थी उसकी जो सवारी थी उसने तय किए हैं 10,000 माइल्स, क्रॉस किए हैं 20 कंट्रीज को यानी 20 देशों को, 40 दिन की यात्रा रही थी, तो बहुत सारे अनुभव हुए होंगे। तो शुरुआत करते हैं राजी, सबसे पहले आप बताइए कि ये जो रैली है मंगोल रैली वो क्या है?
कि मंगोल रैली जो है ये एक हर साल होती है, ये एक फन और एडवेंचर रैली है। तो लोगों को एक्चुअली क्या होता है, रैली जैसे ही हम बोलते हैं तो एक बिल्कुल माइकल शुमाकर टाइप की वो एक रैली दिमाग में आ जाती है, या फिर वो कार रेस याद आ जाती है, या फिर बिल्कुल रेगिस्तान में दौड़ती हुई स्पीड कार आ जाती है। लेकिन कई तरीके की रैलीज होती हैं दुनिया में। तो मंगोल रैली एक चैरिटेबल रैली है, जो एक एडवेंचरिस्ट है ये इसको करवाते हैं हर साल। और एडवेंचरिस्ट जो है दुनिया भर में कई रैलीज ऐसे एडवेंचर और फन के लिए रैली कराते हैं। अब इसमें साथ साथ ये चैरिटी भी करते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। तो जितनी भी टीमें जुड़ती हैं उनको जिम्मेदारी दी जाती है कि वो कोई भी चैरिटी अपनी तरफ किसी से जुड़ जाए, या फिर एक किसी चैरिटी से जुड़ा, और साथ साथ एक उनकी खुद की भी चैरिटी होती है जो कि है कूल फॉरेस्ट करके, कूल अर्थ करके। तो कूल अर्थ जो है वो रेन फॉरेस्ट को बचाने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो उनके लिए ये लोग चैरिटी इकट्ठा करते हैं। तो हमने भी किया है अपने माध्यम से, तो कोई बहुत बड़ा नहीं, लेकिन जितना भी हुआ तो वो भी एक लोगों की तरफ से प्यार था, तो जो हमने इस रैली के लिए, रैली के माध्यम से ये पैसे इकट्ठे।
तो ये तो आपने कहा कि रैली के माध्यम से आपने एक प्रकार का पैसे इकट्ठे करने का काम किया, एक चैरिटी के लिए काम किया। इसमें कितने लोग जुड़े थे, कौन कौन थे वो लोग,
बिल्कुल,
और कैसे तैयारी?
आपने जैसे ही सवाल पूछा, एक्चुअली बहुत सारी यादें, 2-3 सालों की यादें ताजा हो गई है इस सवाल के पीछे। क्योंकि देखिए होता क्या है कि हम लोग जो हिंदुस्तानी लोग होते हैं, जब भी कोई ऐसी एक्साइटिंग चीजें होती हैं और जब पूछा जाता है कि भाई कौन कौन चलेगा, तो बहुत सारे हाथ खड़ा हो जाते हैं कि अरे हम भी चलेंगे। पहले तो मैं सबसे पहले क्रेडिट देना चाहूंगा इस पूरी रैली का, जो हमारे टीम के कैप्टन थे अरविंद रॉय, उनको देना चाहूंगा, क्योंकि ये उन्हीं की उपज थी, उन्होंने ही इस रैली को खोजा था, दिमाग में आया था, और वो एक दिन प्रपोजल लेकर आए हम सभी दोस्तों के पास। कई लोग जुड़े शुरू में, 2-2.5 साल पहले से ये चल रहा था। अब चूंकि देखिए सभी हम विदेशों में रह रहे हैं, तो सभी की अपनी अपनी जरूरतें हैं सभी की, और सभी के अपने कमिटमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, तो धीरे धीरे जो लोग हैं वो कम होते गए, और अंत में जाकर फिर 4 लोग हम लोग फाइनल हुए इस रैली के लिए कि हाँ चलो ये 4 लोग जाने वाले हैं। तो ऑफकोर्स हम चारों जो हैं बहुत पुराने दोस्त हैं, और चारों ही अलग अलग फील्ड से एक्चुअली हम लोग काम करते हैं, अपने अपने क्षेत्र में हम लोग अलग अलग काम कर रहे हैं, तो उस वहां से ये पूरा ये जो है सिलसिला शुरू हुआ था।
तो इस रैली के, जैसे हर एक स्पर्धा के, हर एक फंडरेजिंग इवेंट्स के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, तो क्या इसमें भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस थे?
जी बिल्कुल, इसका सबसे जो फनी रूल्स मैं शेयर करना चाहूंगा ये था कि आप जिस गाड़ी का इस्तेमाल करेंगे इस रैली के लिए, जो 10,000 माइल जाना है, वो थी कि आप 1.2 लीटर से ज्यादा बड़ी गाड़ी नहीं ले सकते इंजन जो है, तो छोटी गाड़ी होगी, और बस ये कंडीशन था। और इसमें देखिए जो रूट्स हैं वो आप कोई भी रूट चुन सकते हैं, मंगोलिया उलन बतार में ये रैली वहां तक जाती है, फिर रशिया में उलन उत में ये फिनिश होती है। तो ये है 1.2 लीटर की गाड़ी होनी चाहिए, ये एक सबसे बड़ा कंडीशन था, जो कि अपने आप में एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है, क्योंकि आपको 16,000 किलोमीटर चलना है और एक छोटी सी गाड़ी में आपको ये सफर तय करना है। तो ये अपने आप में, खैर ये अपने आप में सबसे बड़ा मुझे लगता है कि यही एक चैलेंज था जो पार करना था। तो उससे पहले, लेकिन इस रैली से पहले डेफिनेटली बहुत सारा लॉजिस्टिक, बहुत सारा पेपर वर्क और काम बहुत सारा था। 4 लोग फाइनल हो गए, लेकिन उसके बाद क्या क्या कुछ था, कहाँ कहाँ का वीजा आपको लेना था, क्योंकि हम चारों ही न्यूजीलैंड पासपोर्ट पे हैं, हम चारों के पास ही न्यूजीलैंड पासपोर्ट था, तो यूरोप कंट्रीज के लिए तो हमें प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन अब आपको तुर्कमेनिस्तान भी जाना है, आपको उज्बेकिस्तान जाना है, आपको मंगोलिया जाना है, आपको रशिया जाना है, तो इन सब के आपको वीजा लेना पड़ता है, और इसके लिए आपको कई महीनों पहले इस सब की तैयारी करनी पड़ती है।
तो आपने जिस तरह से कहा कि अजीब से रूल्स रेगुलेशन थे, आपको छोटी सी गाड़ी में जाना था, आप 4 दोस्त तय हुए थे, आपको 20 जितने देशों को पार करना था, तो अगर इसके रास्ते के बारे में संक्षिप्त में अगर हमारे श्रोताओं को आप जानकारी दें कि कहाँ से निकले, कौन कौन सी जगह पे निकले, भौगोलिक स्तर से क्या क्या अलग अलग प्रकार के देशों को आपको पार करना पड़ा था।
जी देखिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न है कि भौगोलिक स्तर पर क्योंकि लैंडस्केप अगर माने तो, क्योंकि हम बाय रोड जा रहे थे और जैसे जैसे जो भी कंट्री का बॉर्डर हम रोड बॉर्डर क्रॉस करते थे, और बड़ा ही एक प्रकृति का एक अजीब सा कह सकते हैं, बड़ा ही खूबसूरत सा रूप देखने को मिलता था कि बॉर्डर चेंज करते ही, वो भले ही दोनों बॉर्डर 50 मीटर की दूरी पे हो, लेकिन बॉर्डर चेंज करते ही भाषा और लैंडस्केप दोनों ही बदल जाते थे, और बड़ा ही उतार चढ़ाव और बड़ा ही अलग रूप प्रकृति का नजर आता था इसमें। देखिए, शुरुआत ऑफ कोर्स लंदन से हुई थी ये जर्नी, फिर लंदन से हम लोग फ्रांस पहुंचे, फ्रांस से बेल्जियम, लग्जमबर्ग, फिर जर्मनी में, फिर हम पहुंचे जर्मनी में, इनकी तरफ से एक पार्टी होती है, फिर हमने जर्मनी में हम रुके, तो इस तरीके से सिलसिला आगे चलता रहा, बढ़ते रहे। और खूबसूरती की बात यह है कि देखिए, हर जगह पर जैसे मैंने कहा कि भौगोलिक स्थिति चेंज होती रही, और सबसे बड़ी बात थी कि भाषा की। एक इंग्लैंड को छोड़ के मैं बताऊं हरिता, कि आगे जो है इंग्लिश को लेकर काफी प्रॉब्लम होती रही, क्योंकि लोगों को, लोग अपनी ही जो जहाँ के थे वहीं की भाषा बोलते हैं, और बहुत कभी कभी ऐसा होता था कि इंग्लिश लोगों को समझने में बड़ी दिक्कत होती थी। तो कहीं ना कहीं एक बहुत चैलेंजिंग भी था भाषा का, और कहीं चीज एक बड़ी प्रभावित भी करती थी कि देखिए, आज जबकि हम लोग इंग्लिश को इतना मापदंड देते हैं, इतना ज्यादा आगे रखते हैं, वहां ऐसे इतने देश हैं जो केवल अपनी जो उनकी भाषा है उन्हीं के बोलते हुए, उन्हीं की बोलचाल को इस्तेमाल करते हुए वो आगे बढ़ रहे हैं, और काफी सक्सेसफुल कंट्रीज हैं, चाहे वो जर्मनी हो गई, चाहे वो फ्रांस हो गई, या आगे जितनी भी कंट्रीज आई हैं।
बहुत अच्छा लगा, और राज्य आपसे बात करेंगे, आपके अन्य पहलू हैं इस पूरी यात्रा के। अगले
जी
अंक में हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।